मेहमान नवाजी की इस्लाम के अंदर क्या अहमियत है, इस पे आप रोशनी डालिए।
मैं सबसे पहले सलाम अर्ज़ करती हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आज का भी उनके लिए मुफीद साबित होगा
इंशाअल्लाह।
और आपकी खिदमत में भी सलाम।
वालेकुम सलाम।
अर्ज़ ये करना था कि देखिए, मेहमान नवाजी इस्लाम में दरअसल समाजी या जिसे आप इज्तिमाई कहें उस ज़िंदगी पे बहुत ज़ोर दिया गया है, क्योंकि उसके बग़ैर इंसान की न शख्सियत खुल के सामने आ सकती है और ना ही वो कहीं पर मुफीद पाया जा सकता है। ज़ाहिर है कि जब एक ही आदमी वो अपने ही बारे में सोचेगा तो वो अपने ही बारे में, मिसाल के तौर पर खाना पकाना है या कुछ भी करना, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो और वो ऐसा उसे बनाया नहीं है खुदा ने। खुदा ने उसको एक इज्तिमाई यानी फिक्र दी है उसे, तो अगर वो अपने आप को बिल्कुल अलग करता है तो यानी अपनी फितरत से वो दूर हो रहा है। इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो सिला रहम पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सिला रहम है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने नज़दीक तरीन लोगों से और जो अगर नस्लों के जिनमें हो गया है वो सब सिला रहम में आते हैं कि आप उनसे अपने उनके साथ रहें, उनसे मिल के रहें, उनकी मुश्किलात में, अपनी मुश्किलात में उन्हें शामिल करें, उनकी मुश्किलात में आप शामिल हों, उनकी खुशियों गम हर चीज़ में। तो इस तरह होगा ये कि एक बहुत ही मुस्बत किस्म का समाज सामने आएगा जब अफराद इस किस्म के होंगे और ये ख्याल रखेंगे। और इस तरह से जैसे लोग कहते हैं कि भाई यूरोप में तो कोई किसी को वो ही नहीं करता तो हर एक आज़ाद है, ये आज़ादी हमारे लिए बड़ी गलत है। जब तक हम लोग मिल के रहते थे, मिल के रहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही घर में रहना,
हाँ,
बल्कि एक दूसरे के नज़दीक, एक दूसरे की फिक्र में रहना, एक दूसरे से ज़हनी तौर पे नज़दीक रहना, तो फिर हम एक दूसरे के बच्चों की भी फिक्र करते थे और हर अच्छाई बुराई में चाहते थे कि जैसे हमारा बच्चा बुरा ना हो तो उसका भी ना हो, हमारे करीब कोई बुराई ना आए तो उसके करीब भी ना आए। तो इस तरह हमारा समाज, हमारा घराना बड़ा महफूज हुआ करता था। इस्लाम ने वही चीज़ मेहमानदारी के ज़रिए भी रखी है कि एक तरीका ये भी है कि तुम अपने आप को बिल्कुल अलग ना कर लो, लोगों से सेक्लूडेड जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वो ना हो, कर लो वो हालत ना होने पाए, लोगों से मिलो। तो मिलने का एक तरीका ये भी है कि उन्हें अगर वो नहीं आ रहे हैं अपने घर बुलाओ, मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्हें दावत दो और उनके घर जाओ, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार भी आप ईरान में हैं, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में, इंडिया में, दूसरे मुल्कों में, या रिश्तेदार नहीं, तो जो लोग आपके हम ज़बान हैं, जो लोग आपके हम फिक्र हैं, जो लोग आपके हम दीन हैं, इसकी बात नौ बताती है उन लोगों की कि जो मैंने दीनी लिहाज से आपके साथ यकसा नहीं है, दूसरा मजहब है उनका, लेकिन इंसान है, आपके पड़ोसी हैं, उन सबसे मेल मिलाप
इस्लाम ने तो बहुत ताकीद
बिल्कुल है। तो मेहमानदारी पे ताकीद बहुत ज्यादा है। और मैं बताऊं अगर आपके पास वक्त है
जी, जी,
तो इस हद तक ताकीद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब मेहमान तुम्हारे घर में आए तो जान लो कि खुदा तुम पर एहसान कर रहा है। मेहमान जब तुम्हारे घर आए तो समझो ये खुदा का एहसान है तुम पर, ताकि इस वसीले से वो तुम्हारे गुनाहों को धो दे, ताकि मेहमान के वसीले से इस गुनाह तुम्हारे गुनाहों को धो दे। इसके अलावा ये कि मेहमान जो आता है वो अपनी रोजी ले के आता है, और जब जाता है तो वो मेहमान मेज़बान के गुनाहों को धो के जाता है, और जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर में फरिश्ते नहीं आते। ये मैंने मासूमीन के अक़वाल देखे, ये मैंने मासूमीन के अक़वाल देखे। और इसी तरह ये कि जब आप किसी को बुलाएं तो अक्सर हमारे यहाँ होता है नाराज़गी है, हम तो नहीं जा रहे उनके घर, उन्होंने फला मौके पे हमारे साथ ये किया था। और यहाँ मैंने छठे इमाम का, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये कौल देखा, आप फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें दावत दे और तुम उसकी दावत कबूल ना करो, या अगर तुमने बादले दे, यानी ये तो इमाम ने नहीं कहा, मैं कह रही हूँ कि बादले नाखास्ता और लोगों के दबाव में दावत कबूल कर ली, तो वहाँ जाके कुछ खाया नहीं, ज़रा सा चक के बैठ गए, नहीं नहीं और
तो अपनी नाराज़गी भी तो दिखानी,
तो वो अपनी नाराज़गी दिखानी। तो जिसने ये किया कि या दावत कबूल ही ना की, या अगर दावत कबूल की तो उसके घर जाके कुछ नहीं खाया, उसके लिए है कि ये जफाकारी है, ये अदम इल्तिफात है और ये जफाकारी है, यानी ये गुनाह
है।
इस हद तक यानी दावत कबूल करने पर जोर है। तो ये क्या है, दोनों तरफ दबाव है कि देखो अगर तुम खुदा को मद्देनजर रखोगे तो खुदा तुमसे इन चीजों में खुश होगा, इन चीजों के जरिए तुमसे खुश होगा। ये चीज बताने के लिए ये बातें की गई हैं कि उधर उस जिसको आपने बुलाया उसको भी इस बात का ख्याल रहे, कि उसे आना है, नहीं तो वो खुदा की नाफरमानी कर रहा है, मासूमीन की नाफरमानी कर रहा है। और इस तरफ मेहमान पर भी ये है कि तुम ये ना समझना कि ये अजाब आ गया घर में, बल्कि जो ये आया ये खुदा का एहसान है तुम पर जो तुम्हारा मेहमान तुम्हारे घर आया है।
जी इंशाल्लाह इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में भी और मेरे ख़्याल से हमारे नाज़रीन के जहनों में भी होंगे मेहमान नवाजी मेहमानदारी के हवाले से। ये बड़ा ही वसी मौजू है।
सवाल पूछा गया है पाकिस्तान से हम लोगों के लिए आया है और पूछा गया है कि जब हमारी हैसियत ही नहीं है तो हम मेहमान कहाँ से बुलाएं।
जी मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा,
देखिए मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल से इस दूसरे हिस्से का आगाज़ कर रही हूँ। आप फरमाते हैं यानी मौला ने इस सिलसिले में ये कहा है कि आपके लिए एक तो पहले एक वाकया बता दूं कि एक मर्तबा किसी ने देखा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठे हैं और गिरिया फरमा रहे हैं, रो रहे हैं। उनके पास गए, क्या बात है, आप किस लिए परेशान हैं? कहले 7 दिन से हमारे घर कोई मेहमान नहीं आया है और मुझे ये खौफ है कि कहीं खुदा अपनी रहमतें रहमत की नज़र तो मुझसे नहीं हटा ले रहा है। और फिर आपने उसके लिए ये कहा कि जो कोई मेहमान की आमद की खबर से खुश हो खुश होगा वो, यानी जैसे मेहमान घर में आ रहा है तो उसकी आहट से, या किसी ने खबर दी कि फला मेहमान आ रहा है और इससे वो खुशी का एहसास करेगा तो वो जन्नत में मेरा और हज़रत इब्राहिम का हमनशीन होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बताऊं, इस तरह के सवालात आजकल, इस तरह के जो सवालात हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ लोग कहते हैं
घर
बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करते
है।
इस टाइप की जो बातें होती हैं इनका एक मुख्तसर सा जवाब ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर हम हमारी नियत पे से मुताल्लिक होती
हैं,
नियत पर है। कैसे? नियत पे इंहिसार इस तरह है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हुई और हज़रत अली को वलीमा देना था तो वो एक बकरा आया और मालूम पूरे सारे अरब
कबीले
जो है सारे जमाए, जितने भी कबीले सबकी दावत है, तो ज़ाहिर एक बाज़ लोगों के जहन में आया कि भाई ये खाना कैसे पूरा होगा। तो रसूलुल्लाह ने जब उसको निकालना शुरू किया खाने को तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। ये जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो बरकत होती है।
और अकीदा
अब आपकी वही आपकी नियत पर है, वही अकीदा है, नियत ही तो अकीदा, कि वो आपकी नियत पर है कि आपकी नियत कैसी है। तो अगर आप खुदा पर पूरा भरोसा करते हैं और ये सोचते हैं कि जिस खुदा ने इतनी ताकीद की है मेहमान नवाजी की, वो खुदा हमें मदद करेगा जब हम इसमें मतलब यानी इस उस पर कदम रखेंगे, इस राह पर कदम रखेंगे तो वो हमें मदद करेगा। तो हमारा अगर यानी हमारी नियत जो हो वो कुर्बतन इल्लाह हो, यानी जब हम किसी की पज़ीराई करने जा रहे हैं, हम किसी मेहमान को बुला रहे हैं अपने यहाँ, या वो हमारे घर आ गया है, तो ये हम खुदा को खुश करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। तो जब ये हो जाता है तो एक तरफ आपकी मुश्किलात हल हो जाती हैं, दूसरी तरफ आपको सवाब होता है। और अगर मकसद जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि हमारा नाम होगा या वो हमारी बदनामी होगी अगर हमने कुछ नहीं रखा और हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो उसमें ये होता है कि उस परेशानी के आलम में अगर आप कुछ रखते भी हैं तो उसके सवाब से बहुत ही कम आपको फ़ायदा होता है, या उसका अगर उसकी वजह से हो कि सिर्फ अपने नाम और शोहरत के लिए हो, अपना बड़ापन दिखाने के लिए हो, तो फिर सवाब भी नहीं मिलता इसका बिल्कुल भी। तो जी
देखिए इसी बात को मैं वो करके इदामा दूंगी एक तरह से कि देखिए कहीं तो ये फिक्र है लोगों की, ये सोच है। वहीं पर हमने ये भी रिवायात में पढ़ा है कि जहाँ एक फैमिली महसूस करती है कि बहुत फ़क्र से दोचार है, गुर्बत है, परेशानियाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो ये रिवायत पढ़ी कि इन परेशानियों को दूर करने का एक तरीका घर में दावत खिलाना है, मेहमानों को बुलाइए और खाना खिलाइए। ये आए वही बात नहीं होगी?
बात तो बिल्कुल वही है, मतलब खाना खिलाइए से ये हमारे साथ मसला ये होता है नहीं, हमने पैगंबरों के लिए सुना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है कि आप अच्छा खासा फासला था आपने आपके जहाँ पे आपका घर था वहाँ से मेन उस रोड का या कह दें उस चहर्रा का कि जहाँ से मुख्तलिफ शहरों की तरफ रास्ते जाते थे, आप वहाँ पे आके बैठ जाते थे और किसी को अपना मेहमान करते थे, और जब वो मेहमान घर पे आ जाता था तभी खाना खाते थे। तो क्या हज़रत इब्राहिम के पास बड़ी दौलत जमा थी? नहीं, लेकिन है क्या कि अगर आप सवाब पर नज़र रख के कोई काम करें तो आपकी मुश्किल खुदा खुद हल भी करता है और दूसरे आप भी उस बेसुकूनी से दो चार नहीं होते। अब देखिए मेहमान जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, पहली शिफ्ट में एक तो ये कि जो अचानक आ गए,
सही,
मेहमान अचानक आ गया, और एक वो होता है जिसे आपने दावत दी है। अब अगर जो मेहमान अचानक आ गया उसके लिए मैंने मासूमिन के अकवाल में देखा है कि तुम्हारे पास जो कुछ हो, जो मैसर हो तुम्हें, तुम उसके सामने वो रख दो, लेकिन मिलो उससे बहुत ही खुशरुई से, खंदा पेशानी से। आप आ गए, बहुत अच्छा किया, और वाकई आपको तहे दिल से अगर खुशी हो रही है मेहमान के आने की, इसी कसद क़ुर्बत का ख्याल रख के ये मेहमान अपनी रोज़ी खुद लेके आया है, ये इसके आने से हमारे गुनाह धुल रहे हैं,
बिल्कुल
समझ रहे, जिस खुदा ने ताकीद की वो खुद हमारी मदद करेगा। जब ये सारी फिक्र जहन में तो इंसान खुश है, जब खुश है तो उससे बहुत खंदा पेशानी से मिल रहा है, खंदा पेशानी से मिल रहा है, जो कुछ आपके घर में पक्का है या जो कुछ आपके घर में मौजूद है आप उसको ढंग से लाके सलीके से लाके उसके सामने
और देखिए, अगर जहन में ये ना हो कि नमूद नुमाइश की जो एक ख्वाहिश होती है वो अगर ना
तो नहीं। अब आपने वो जो नाखानदा मेहमान है यानी बगैर बुलाए, आपको बगैर बताए अचानक आ गया, या टेलीफोन किया कि हम पहुंच रहे हैं, अब आपके पास करने का वक्त नहीं है, मान लीजिए कि आप उस पोजीशन में, ये बात में देहात शहर अमीर गरीब सब के लिए
काफी तफसीली हो जाएगी बात। इस पे हम वापस आके बात करते हैं कि जो अचानक मेहमान आ गया ये जिसको दावत दी, इस हवाले से आपको बात करनी है, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो बात करेंगे। तो चलते हैं हसन की तरफ।
और बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम लोगों के सामने होती हैं लेकिन हम लोगों को उसके बारे में इल्म नहीं होता, उसमें एक चीज यही होती है कि मेहमान से किस तरह से हम लोगों का बर्ताव होना चाहिए, और ये कि अगर मिसाल के तौर पर अचानक पहुंच गए तो उनसे हम किस तरह से पेश आएँ, और अगर वो हत्ता ये है कि हम नहीं चाहते वो यहाँ पर हों तो किस तरह से पेश आया जाए कि हम उसको भी बुरा ना लगे और बाद में हमें भी कोफ ना हो।
तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि मेहमान जो अचानक आ जाए या जिसको हमने बुलाया है, अब जो अचानक आ गया तो उसके साथ अब हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए?
देखिए, जो चीज़ मैंने पहले कही कि क़ुर्बतन लिल्लाह आपके जहन में है ना, अगर ये आपने ये जहन में रखा हुआ है मेहमान आया, इसका मतलब अचानक खुदा हमें अपनी रहमत देना चाहता है, समझ रहे हैं? तो आप रे को मतलब जे में तब्दील ना करें,
सही
रहमत को जहमत मदनी तौर पर बिल्कुल आमादा हो जाए। खुदा ने अचानक हम पर ये कर्म किया है, हम पर ये एहसान किया है कि एक अचानक मेहमान भेजा है। अब जब उस अचानक मेहमान, तो आप उसको इस्तकबाल पूरे तौर से करें, घर थोड़ा सा फैला भी होता है कई बार, कभी कोई मुश्किल भी हो कोई बात नहीं, उसको भी अंदाजा है कि वो अचानक आया है, और ऐसा नहीं है कि किसी के घर में कभी कोई घर फैला होता ही नहीं है, समझ रहे? अब आपका की तवज्जो पूरी के पूरी उस मेहमान पे होनी चाहिए। आपके घर में जो चीज़ है, आप शरबत पानी चाय, चाय के साथ कोई भी चीज, जो भी आपके घर में
आने
खाना
वाला
है,
तवक्को भी नहीं रखता,
तवक्को भी नहीं रखता, तो आपने आप उसको वो चीज़ें आप उसको पेश करें। और ये मैंने देखा है, कॉल देखा है कि अगर तुम मेहमान की पजीराई कर रहे हो और तुमने जो चीज़ें रखी हैं उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत कम हैं, तो तुम सिर्फ अपने लिए जहमत में नहीं पैदा कर रहे, ये देख सिर्फ अपने लिए जहमत पैदा कर रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो जो तुम्हारे पास जो चीज़ें थी तुमने पूरे तौर पे उसे वो रख दी, उसके सामने खुशदिली से उससे मिले, अच्छे अल्फाज में उससे बात की, और शिकवे शिकायत नहीं शुरू करना चाहिए जब भी मेहमान, अरे भाई कहाँ इधर की राह कहाँ भूल गए, अरे हम तो गरीब, उसको शर्मिंदा, ऐसे लोगों से फिर मेहमान घबराने लगता है, जाने आ जाने वाला उस घर में घबराने लगता है, भाई वहाँ कौन जाए, उनकी तो शिकायतों से ही तबीयत आजिज रहती। तो ये होता है मेहमान को एक तरीके से तंग करना, तो ये मेहमान को तंग ना करें आप किसी भी शक्ल में। आपके पास जो नाखानदा मेहमान है, अचानक आया है, जो कुछ घर में है आप इत्मीनान के साथ रख दें, मोहब्बत से उससे बात करें, अच्छी तरह से उसे तवज्जो दें, उसका पूरा एहतराम करें और सवाब हासिल करें। जो मेहमान आपने बुलाया है, वो मेहमान भी दो तरह के होते हैं, वो मेहमान जो है ये नाखानदा भी कई बार दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि जिसको आपने किसी एक वक्त के लिए बुलाया, ठीक है ना, अब आपने उसको एक वक्त के लिए बुलाया तो उसके लिए आपका फ़र्ज है कि जो आपकी हद अक्सर तवानाई है जिसमें माली भी शामिल है,
सही,
वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आपकी तवानाई जो है, आपके घर में आलू है और प्याज है और थोड़ी सी तरकारी कोई भी रखी हुई है कुछ है, तो अब आप वो तरकारी और वो दाल तो पकाएंगी, आपने उसे बुलाया, कोशिश करें कि उसके लिए कोई गोश्त कोई मुर्ग किसी चीज़ का इंतजाम करें, क्यों, क्योंकि आपने बुलाया, कोई वैसी चीज़ बनाए जो आपके रोज़मर्रा के खाने से अलग हो थोड़ा सा, यानी जिसे आप आम, मैं अपने जैसे मामूली हैसियत के लोगों की बात कर रही हूँ, उनकी बात कर रही हूँ कि अगर ये, अगर आपके घर में माशाल्लाह अच्छा ही है वो, तो आप उसमें अगर एक सालन है दो सालन है, तो आप कोशिश करें कि आपकी तवानाई है कुछ मिठाई का इजाफा कर दें, कुछ चावल दो तरह के बना दें, सालन एक और बढ़ा दें, कुछ इस तरह का। इसमें मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर, और खुद रसूल अल्लाह का कौल है कि अगर तुमने उस जमाने में सोचिए, अगर तुमने 1,000 दिरहम भी लगा दिए मेहमान की पजीराई पर, यानी तुम्हारी हैसियत है तब, जाहिर है, तो लगा दिए, तो ये इसराफ नहीं है।
सही,
मेहमान तो अब मेहमान के लिए है, खुदा की खुशनुदी,
ये है सेवा मुसलमानों का।
तो ये है आपका मतलब, इस तरह से आपको पजी, जिसे नहीं बुलाया उसके सामने आप चीजें रखें, लेकिन फिर उस वक्त कंजूसी ना करें कि फ्रिज में रखा हुआ है सामान
तो नहीं लाके रखना,
नहीं अब यार हमें तो खुद ही खाना है बच्चों को, नहीं, उस वक्त आपको मेहमान को सब पर तरजीह देनी है, ठीक है ना। तो उस जो कुछ आपके पास है वो उसको रख दे, अगर बहुत अच्छी चीज है तो बहुत अच्छी बात है, आप रखें, आप इतनी सलीकेमंद हैं हमेशा तैयार रखती हैं, रखें, इस खुदा सवाब भी देगा बरकत भी देगा। और अगर आपने मेहमान बुलाया है तो उसके लिए आपको खास तौर पे पजीराई करनी पड़ेगी।
अच्छा हसन, आपके पास सवाल था।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छा सवाल है, यहाँ पे हम शामिल जरूर करना चाहेंगे कि पूछा गया है कि मेहमानों को किसी मकसद की खातिर उनकी पजीराई करना, इसके बारे में क्या ख्याल है?
हाँ, कोई खास हदफ जहन में है?
हाँ, अक्सर हम लोगों के साथ अफसोसनाक, यानी अब जो माशरे में हम लोगों के साथ से मतलब ये कि माशरे में जो चीज़ हो गई है कि अक्सर ऐसी दावतें की जाती हैं जिसका कोई मकसद हो, कोई तरक्की हो, कोई नौकरी दिलवाना हो, कोई शादी ब्याह का कोई चक्कर हो, इस तरह की, इस तरह का जो चक्कर होता है उसमें वही वाली बात है कि उसमें शायद सवाब का परसेंटेज बहुत लो होता होगा।
हाँ, जहाँ पर इस टाइप का हदफ है, लेकिन अगर एक फैमिली है जिनकी मसलन
जो इनके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ कि जो ऐसा इस तरह की जो बात होती है उसमें सवाब का परसेंटेज तो जिसे कहते हैं बहुत ही कम होता होगा, मैं तो नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं होता होगा, बहरहाल आपने मेहमान बुलाया है, लेकिन आम हालात में जब आप किसी में मतलब कोई आप मेहमान आप बुलाते हैं और आप उसकी उसको अहमियत देते हैं तो उसमें आपका सवाब पूरे का पूरा होता है। और उसके सिलसिले में कि अगर आपका मेहमान बाहर से आया, वो आपके घर ठहर गया, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि आप इसलिए नहीं घबराएं कि ये रहमत कंटिन्यूस दो मुसलसल लगातार 2-3 दिनों तक आपके पास है, ठीक है, उसमें भी आपकी जितनी तवानाई है, आपके पास अगर मान लीजिए बच्चों का कमरा अलग है और आपका अलग है, बच्चों को उस 2 रात के लिए अपने कमरे में कर लें, मेहमान को वो दे, उसे एहसास हो कि आपने उसे अहमियत दी है,
बिल्कुल
ठीक है ना। मेहमान की सबसे बड़ी खूबी मतलब यानी जो बात जिसके लिए पे बहुत जोर है कि मेहमान जब आपके घर से जाए तो राजी जाए,
बिल्कुल
राजी और खुश जाए, जब उसे ये एहसास हो कि उन्होंने हमारी रिश्तेदारी या दोस्ती या जो भी रिश्ता था वो निभाया है, ये हो, वो आपके खाने के बारे में बहुत कम सोचेगा,
बिल्कुल वो अखलाक के बारे
जितने,
में ज्यादा
जितनी ज्यादा अच्छी तरह से आप उसको तवज्जो देंगी, जितना उसको खुश रख सकेंगी, जितना उसकी मिसाल पर मेहमान के साथ सामान है तो अब आप आके दरवाजे पे, एक तो आपको दरवाजे पे आके इस्तकबाल करना है, दूसरे आपको ये देखना है कि उसका सामान खुद उठाने की कोशिश करें, आप मेहमान पे ना छोड़ें, कोशिश करें, इससे भी उसके उस एहतराम का पता चलता है, जो ये मैं सारे अकवाल में बता रही हूँ,
अकवाल ही की रोशनी
मैं
में, अकवाल
की रोशनी में बात कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, उसका सामान उठाओ,
बिल्कुल
उसके जूते बराबर करके रखो,
सही,
उसकी जरूरतों का ख्याल रखो। लेकिन एक चीज जो बहुत मतलब मजे की मुझे बहुत नजर आई और मुझे बहुत हंसी आई आजकल, ये बहुत होने लगा है और बड़े अफसोस की बात है कि होने लगा है, वो ये कि मेहमान से आप ये ना पूछें आप ये खाएंगी,
आप वो खाएंगे? मेहमान बेचारा
तो मेहमान आपसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे ये खाना है या मुझे वो नहीं खाना है, नहीं नहीं मुझे तो भूख नहीं है, मुझे चाहे उसकी भूख से बुरी हालत,
बुरी हालत,
तो ये मना है बाकायदा शरण कि आप मेहमान से ये नहीं पूछें कि उसे हम ये लाएं या ये ना लाएं, ये गलत है। और ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि आप बचत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, आप जो भी इंसान करता है वो पस्ती दिखा रहा है,
बिल्कुल।
अब तो ये हो गया है कि वो आपसे पूछा जाता है कि आप एक रोटी खाएंगे या 2 रोटी खाएंगे,
अल्लाह
तो मेहमान बैठ के क्या बेचारा क्या आप 2 पकाएंगे,
मैं तो आधी खाऊंगा,
वो हम खाएंगे नहीं, रोटी नहीं खाते जबकि भूख लगी हुई,
भूख से बुरा हाल,
बुरा हाल होगा
उसका।
तो ये
सेवा,
ये चीज बहुत सख्त मैंने मना देखी कि उसमें मना है कि तुम मेहमान से ये पूछो, और इसके अगर वक्त हो तो मैं
नहीं
वाकया बताती हूँ एक आपको
इंशाल्लाह। तो फिर हम अगले अपने उसमें जो है ना जब वापिस आएंगे उसमें हम कुछ खास अगर निकात की तरफ इशारा करें।
हाँ, मैं एक वाकया सुनाने वाली थी लेकिन वक्त नहीं, अगर कभी फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह आइंदा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो इस बात पर बहुत ताकीद होती है कि आपने अगर मेहमान मेहमान बुलाया है, तो मेहमान की कोई भी हैसियत हो, वो गरीब हो, फ़कीर हो, अजनबी हो, रिश्तेदार कोई भी हो, आपको ख़ुद उसकी पज़ीराई करनी है। ख़ुद आइम्मा अपने मेहमानों की खुद पज़ीराई करते थे, गुलामों और कनीज़ों को नहीं उनके काम करने देते थे।
बच्चे के हाथ में फ्रूट नहीं दो के ला के तो रखे।
हाँ, तो और सारा अपने काम। आप चाहे आप जिस पोजीशन में हो, जितनी बड़े उस मकाम पे हो, आपको पज़ीराई खुद करनी है। एक तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने किसी को बुलाया है और कोई चीज़ आपको उसकी नागवार भी गुजरी है, कुछ भी है, तो आपका रुख ऐसा नहीं होना चाहिए कि और या पज़ीराई में कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी खातिर मुदारात में कमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपने उस पर जुल्म किया है। अगर मेहमान बुला के और उसकी पजीराई न की और उसे खुशरुई से नहीं मिले, तो आपने उसके ऊपर जुल्म किया है। और तीसरी चीज मैं ये बता दूं कि अगर मेहमान कोई आपके घर आया है, तो 3 दिन तक आपको, 3 शबाना रोज आपको उसकी पजीराई करनी। पजीराई मतलब अपनी हैसियत के मुताबिक उसके आराम के लिए जो भी आप कर सकती हैं वो आप करेंगी, अपने ऊपर अपने को जहमत में ज्यादा नहीं डालेंगी, ये न माली लिहाज से ना जिस्मानी लिहाज से। तो उस तरह की आप 3 दिन तक पजीराई करेंगी, 4थे दिन से जो है वो घर का फर्द बन जाता है।
अच्छा।
तो फिर उसे आम घर के फर्द जैसा, और उसे भी आपके साथ कामों में हिस्सा लेना।